para la celda. Pehle pe kyun na dhyan de. बात चल रही थी नरक के रचयिता की महिमा नहीं होती. नरक का रचयिता रावण उसको जलाती रहती. मनुष्य जानते नहीं हैं कि रावण को वास्तव में कब जलाते हैं और कौन जलाते हैं और रावण जलाया जाता है या उसके जी को जलाया जाता है. नाम रख दिया है रावण. रावण का अर्थ है जो लोगों को रुलाता है, दुख देता है. इन जैसा मनुष्य कोई हो नहीं सकता. इन जैसा इस जैसा नहीं, इन जैसा माने रावण में कोई एक रूप नहीं है. दस धर्मों के दस संगठित रूप हैं जो रावण के रूप हैं. कोई दस चरित्र करने वाले हैं, कोई 100% कामी, कोई 100% क्रोधी, कोई 100% लोभी. तो उनका संगठन हो जाता है. हाँ, दस सिरों का संगठन, उससे दुनिया चलती है. अर्थात दुनिया अनेक मतों पर जब चलती है तो है रावण राज्य. मनुष्य तो पुनर्जन्म लेती है, नाम रूप बदल जाते हैं. रावण का नाम रूप कभी बदलता नहीं. ये दसी सी चले आ गए. दिन प्रतिदिन कुछ आधा लंबा ही बनाते जाते हैं. रावण का चित्र बनाएंगे तो हर वर्ष बड़ा ही बड़ा बनता चला जाता है. लेकिन यादगार कहाँ की है?
संगमी.
ये भी ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में ही शूटिंग होती है. तो जितना जितना वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं, अगली वर्ष उससे ज्यादा बड़ा विशाल रूप बन करके सामने आ जाता है. तो रावण अब बड़ा होता जाता है. अर्थात संसार में उसका रूप विस्तार को पाता जाता है. तमर प्रधान हो गया है और फिर उनको जलाते ही आते हैं. पहले इसका मतलब सत्व प्रधान था. पहले मैंने कब रावण कब से आता है? द्वापर के आदि से. तो द्वापर के आदि में जो आत्माएं आती हैं परम धाम से, आज से 2500 वर्ष पहले रावण आया. तो 2500 वर्ष पहले कौन सी आत्मा आई? अब्राहिम आया. लेकिन अब्राहिम जो आत्मा ऊपर से नीचे आती है वो सात्विक स्टेज वाली आती है परम धाम से, या तामसी स्टेज में आती है? वो तो सत्व प्रधान आत्मा होती है. तो उस समय इतना तमो प्रधानता नहीं थी. बाद में जैसे जैसे संगठित रूप बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे विस्तार होता जाता है, वैसे वैसे रावण का तामसी रूप सामने आता जाता है. मनुष्य तो बिल्कुल समझ से जैसे बाहर हो गए. अभी तुम समझते पति तो कौन बनाता? इन पांच विकारों को रावण कहा जाता है. विकार, तार और विकार. किए हुए कार्य को कहा जाता है कार्य। काम और वी माना विपरीत, जो नियम के विपरीत कार्य किया जाए। काम तो वो होता है जिस काम से दूसरों को और अपने को सुख हो, वही वास्तव में काम है, कर्तव्य है। लेकिन जिस कर्तव्य से, जिस कार्य से दूसरों को दुख हो और सदा काल का दुख हो, वो हो गया विकार, विकर्म। तो इन विकारों को छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। साधु संतादि बहुत करके ये विकार ही दान में लेते हैं। कहते हैं अच्छा झूठ बोलना हमको दे दो, या अक्सर करके काम विकार के लिए कहते हैं कि मास में एक दो बार जाओ, परंतु यहाँ तो पांच विकारों की बात है। एक विकार को छोड़ने से तो काम नहीं चलेगा। सिर्फ एक चोर को पकड़ेंगे तो फिर दूसरे चोर चोरी करने लग पड़ेंगे। तो ये कोई को भी समझाना बहुत सहज है। तुम सभा के बीच भी 104 से 110 से किसी से पूछ सकते हो, समझ जाएंगे ये प्रश्न सिवाय बीके के और कोई पूछ नहीं सकते। पक्ष से कहेंगे ये कोई बीके संस्था का आया हुआ है और कोई ऐसा प्रश्न पूछ नहीं सकता। समर्थक तो पता पड़ जाता है देहधारी धर्म गुरुओं को, ये असली ब्रह्मा कुमार है। कर्तव्य है ना, सत्संग आदि करने वालों को अपना अहंकार बहुत रहता है, इसलिए टाइम लेकर के बाजू में बैठ करके पूछना चाहिए। जब कि कहते हो कि पतित पावन है तो पतित किसने बनाया? परमात्मा तो पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाला है। तो पतित बनाने वाला भी तो कोई होगा, और फिर पावन कौन बनाएगा? तो यह तो बताओ, आप बता देंगे तो हम भी पुरुषार्थ करेंगे। पहले ये बात क्लियर करो, फिर पति तो बनाने वाले कौन और पावन बनाने वाला कौन? तो जरूर कहेंगे परमात्मा है पावन बनाने वाला, और बाकी जितने हैं वो सब खुद भी पतित होते और सारी दुनिया को भी पतित बनाने के निमित्त बनते। वो पतित पावन क्या करके हमसे कराएंगे? पतित पावन आएंगे तो हमसे क्या आकर के कराएंगे? हमसे धंधा कौन सा कराएंगे? पति तो पावन आएगा तो पतितों को पावन बनाने का ही धंधा कराएगा। कौन सा ऐसा धंधा करा देंगे जो हम पावन बनेंगे? खुद जाते रहते हैं पति तो पावन, तो जरूर खुद पतित हुए ना। तो पूछना चाहिए, क्या पावन नहीं दुनिया बनाने वाला कोई और है? पतित दुनिया में रहने वाले तो जरूर पतित ही ठहरे। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य रहे पड़े हैं, तो जहाँ रहे पड़े हैं वहाँ का वायुमंडल का असर तो जरूर पड़ता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, सब इस दुनिया के रंग में रंग गए और नीचे गिरते चले गए, दुनिया भी नीचे गिरती चली गई। तो पति तो दुनिया में रहने वाला पति तो जरूर बनता है, पर पावन दुनिया में रहने वाला कहाँ से आए? तो जरूर कोई पावन दुनिया भी है और पतित दुनिया भी है। पतित दुनिया में वो पावन दुनिया में रहने वाला आता है, पावन दुनिया में है ही पावन सत्युग। स्वर्ग को भी पावन कहेंगे और शांति धाम को भी पावन कहेंगे। तो ऐसे समझें कि आप भी पतित नरकवासी हो, उनसे पूछो, क्योंकि आप न तो स्वर्ग में रहने वाले हो और न परम धाम में रहने वाले हो। पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है ना, पुण्य आत्मा पाप आत्मा जब कहते हैं पतित परमात्मा तो कोई नहीं कहता। माना परमात्मा कभी पतित होता नहीं है, भले वो पतित दुनिया में आता है लेकिन आने के बावजूद परमात्मा को संग का रंग नहीं लगता और मनुष्य आत्माओं को संग का रंग जरूर लगता है, चाहे वो रामकृष्ण की ही आत्मा है क्यों न हो, उनको भी संग का रंग लगता है। तो बताओ पावन कौन बनाएगा? जरूर वही पावन बनाएगा जिसको संग का रंग न लगे। बल पतित दुनिया में आवे लेकिन पतित दुनिया में होने के बावजूद भी, पतित तन में होने के बावजूद भी वो उस पतित तन को और उस पतित तन के संग में रंग में आने वालों को ऊपर उठाएगा, खुद नीचे नहीं आ सकता। तो जरूर भगवान के लिए ही इशारा करेंगे कि भगवान ही ऐसा है जिसको संग का रंग नहीं लगता, ऊपर नजर जाएगी। तो भला वो कब आवेंगे? वो ऊपर वाला कब आवेंगे? उनका नाम क्या है? भारत में सिर्फ आने का टाइम क्या हुआ? जब शिव की जयंती मनाते हैं तो जय जयकार हो जाती है, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जो गुप्त था गर्भ में था वो बाहर आ जाता है। तो ऐसे ही बच्चा तो है स्थूल और शिव है सूक्ष्म, तो उसकी जयंती कैसे होगी? जो गुप्त पार्ट बजाने वाला है जब इस संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है, जैसे बच्चा गर्भ में से प्रत्यक्ष हो जाता है तो उसकी जयंती मनाई जाती है। तो ऐसे ही भारत में शिव जयंती प्रसिद्ध है, उनका नाम है शिव और कोई नाम नहीं देते, क्योंकि जैसा काम वैसा नाम। दुनिया में जितनी भी मनुष्य आत्माएं वो 100% कल्याणकारी कोई नहीं है, कुछ कल्याण करने वाली और कुछ अकल्याण करने वाली भी होती, लेकिन शिव जो है वो सदा शिव गाया हुआ है, वो सदा कल्याणकारी है, कभी अकल्याणकारी नहीं बनता। जो श्रेष्ठ है देवात्माएं हैं उनके ऊपर भी कल्याण की नजर, और जो असुर हैं उनके ऊपर भी कल्याण की नजर। कोई कैसा भी है लेकिन उसके ऊपर कल्याण की नजर सदा रखने वाला एक शिव परम पिता परमात्मा ही है। बाकी तो जितनों को रथ है वो सब स्वार्थ में आ जाते हैं। उस परमात्मा को शरीर का रथ का भान नहीं, रथ है ही नहीं, तो रथ के प्रति आकर्षण क्यों होगा और उस आकर्षण में आकर के अकल्याण का कार्य क्यों करेगा? तो बुद्धि में लिंगाकार ही आएगा कि वो कल्याणकारी कौन? कल्याणकारी वो जिसको अपना रथ नहीं, रथ नहीं तो इंद्रियों का भी बाण नहीं। तो जरूर बुद्धि में लिंग ही आएगा जिसको इंद्रियां नहीं होती। तो लिंग का मतलब क्या हुआ? निराकार, निराकार अर्थात सिर्फ बिंदु, बिंदु नहीं। बिंदु साकार में आता है और साकार में आते हुए भी जिस साकार में आता है उसकी स्टेज निराकारी अर्थात कर्म इंद्रियों की स्मृति से परे की स्टेज बना देता है। सोमनाथ कहेंगे तो भी बुद्धि में लिंग आवेगा। सोम रस माने ज्ञान का रस और नाथ माना जो ज्ञान का रस है उसका स्वामी कहाँ का रहने वाला होगा? फिर जहाँ ज्ञान का रस होता बनता होगा बनाता होगा वही का रहने वाला होगा। तो कहाँ का रहने वाला भक्ति मार्ग में दिखाया है? बनारस। जहाँ ज्ञान का बना बनाया रस मिलता है, कोई बनाना बनाना नहीं पड़ता। तो अभी तुम्हारी आत्मा जानती है परमात्मा भी हमारे जैसा ही सितारे। यह जो सितारे हैं उनको नक्षत्र देवता भी कहते हैं। कहते हैं उन सितारों को जो जड़ सितारे हैं, वास्तव में वो देवता नहीं होते, वो तो स्थूल बत्तियां हैं। वास्तव में हम आत्मा की बात है। जो आत्मा परमात्मा बाप से अपनी बैटरी चार्ज करके पावरफुल बनती है वो नक्षत्र कहे जाते हैं। नक्षत्र वो होते हैं जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, लेकिन नक्षत्र भगवान नहीं। क्या जो भी नक्षत्र हैं वो भगवान नहीं है? तुम नक्षत्र सितारे हो लेकिन भगवान नहीं हो। तुमको भगवान नहीं कहेंगे क्योंकि जितने भी नक्षत्र हैं वो सब चक्कर काटने वाले हैं, इसलिए वो भगवान नहीं हो सकते। तो परमात्मा है बिंदु, परंतु बिंदु की पूजा कैसे होगी? पूजा तो बड़े रूप की होती है, बिंदु को तो सिर्फ याद किया जा सकता है। वो भी जो सूक्ष्म बुद्धि होंगे वो उसे याद कर सकेंगे, देवान में होंगे तो वो भी याद नहीं आएगा। तो पूजा करने के लिए इतना बड़ा रूप बनाया है तो वो भी स्टार है। तो भक्ति मार्ग वालों ने लिंग रूप बनाई दिया है, इतनी बड़ी चीज है नहीं। है क्या परमात्मा? ज्योति बिंदु स्टार, फिर बड़ा क्यों बना दिया? भक्ति करने के लिए, भावना पक्ति करने के लिए। भक्ति माना भावना, आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं है, तो उनको बड़ा बनाना भी रांगो हो जाता है कि बिंदु को बड़ा आकार दे दिया तो शिवलिंग बन गया। कोई मनुष्य को परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है नहीं, इसलिए समझ लेते हैं कुछ बिंदु निराकार का बड़ा रूप शिवलिंग वो निराकार है। वास्तव में बिंदु का बड़ा आकार नहीं है, बिंदु जिसमें प्रवेश करता है उस व्यक्तित्व को वो निराकारी बना देता है। तो ये बड़ी महीन बातें हैं। कहते हैं वो एक दम बिंदी है, उनको याद कैसे करें? क्योंकि याद तो उसको किया जाता है जिसने कोई कल्याण का काम किया हो। नेहरू जी को, गांधी जी को याद करते हैं तो गरीबों को कुछ करते गए हैं कल्याण के लिए, तो उनको याद करते हैं। जो सुख दे करके जाते हैं उनको दुनिया याद करती है। रावण को वैसे कोई नहीं याद करता क्योंकि दुखदाई है। तो जो एक दम बिंदी है उसको याद कैसे करें? अगर बिंदी है तो कल्याण कैसे करेगा? कल्याण करने के लिए तो कोई काम चाहिए। नई दुनिया बनानी है तो भी काम करने वाला चाहिए। तो वो बिंदु करणहार और करावनहार के रूप में प्रत्यक्ष होता है, साकार में प्रत्यक्ष होता है। तो जिस साकार रूप के द्वारा वो करण और करावनहार के रूप में प्रत्यक्ष होता है उसको याद किया जा सकता है। बाकी बिंदु को सिर्फ खींच करके याद करेंगे तो प्रश्न पैदा होगा याद कैसे करें? कांस्टेंट याद ठहरती नहीं, सहज योग होगा नहीं। सहज योग तो तब हो जब लगातार याद टिक जाए, तो वो तो समझने की बात है कि परमात्मा किस रूप से कल्याण करता है सारी शक्ति का। जिस रूप के द्वारा सारी शक्ति का कल्याण करता है वही रूप सारी शक्ति में आज भी पूजा जाता है। और देवताओं की मूर्तियां खुदाइयों में इतनी नहीं मिली है जितनी शंकर की मूर्तियां संसार में मिली है। नग्न मूर्तियां जिन्हें तीर्थंकर लोग, वो जैनी लोग तीर्थंकर कहते हैं। इसलिए बताया कि आत्मा को अपने बाप को याद करना बहुत सहज है। आत्मा जो याद करने वाली है वो जरूर शरीर में होगी, जीवात्मा के रूप में होगी। और जीवात्मा जीवात्मा के रूप में आए हुए परमात्मा को याद करे तो सहज होगा। तो कोई कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। आत्मा में ही अच्छे बा बुरे बा ऊंच या नीच संस्कार होते हैं। तो बाप की महिमा न्यारी है, आत्मा तो एक जैसी है। आत्मा में ही नॉलेज है और आत्मा देखो कितनी छोटी है। मनुष्य गरीब अथवा साहूकार बनते हैं वो भी आत्मा के संस्कार के अनुसार। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान है नहीं जानते, इस कारण आत्मा को भी ज्ञान नहीं। आत्मा का ज्ञान भी कब हो? जब परमात्मा के असली रूप को जाने तो आत्मा का भी ज्ञान हो कि मैं आत्मा कौन, कौन सा विशेष पाठ बजाने वाली हूँ इस सत्य रूपी रंगमंच पर। ये इसमें भी आए मनुष्य तो उल्टा ईश्वर को सर्वव्यापी समझ लेते हैं। आत्मा ये सारा धारण करती है ज्ञान। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, संस्कारों के अनुसार लेती है। तो ये आत्मा बात करती है मनुष्य अपन को मनुष्य समझ करके बात करते हैं। यहाँ अपन को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आत्मा समझना मन बेदानी की स्टेज से दूर रहना, आत्मी की स्टेज में रहना माना परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। आत्मा है, आत्मा है, सब भाई भाई है। कोई ऊंच नीच का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, मनुष्य को कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा को कोई लेपक्षेप नहीं लगता कर्मों को। अरे आत्मा निर्लेप है या परमात्मा निर्लेप होता है? आत्मा तो कभी निर्लेप हो ही नहीं सकते। कि शरीर धारण करेंगी तो उनको लेपक्षेप जरूर लगेगा। काय का लेपक्षेप? अच्छे या बुरे कर्मों का असर जरूर होगा, संग का रंग जरूर लगेगा। अगर आत्मा निर्लेप है तो फिर संस्कार किसमें बढ़ते हैं? आत्मा में ही संस्कार बढ़ते हैं। ऐसे कोई थोड़े कहते हैं कि परमात्मा में संस्कार भरे हुए हैं, अच्छे या बुरे। परमात्मा में तो कर्मों के संस्कार बढ़ते ही नहीं, क्योंकि वो तो निराकारी स्टेज में रहने वाला है। और जो निराकारी स्टेज में रहने वाला है उसको कर्मों का लेपक्षेप नहीं लग सकता। तो सब मुझे हुए हैं, मुझने वाले किसी की सदगति कैसे कर सकते हैं? सदगति कौन कर सकता है? व्यक्ति मन बुद्धि कभी मुजात में नहीं पड़े, संशय में नहीं आए, सदा निश्चय बुद्धि बनी रहे। अनिश्चय आया और बुद्धि में मुजान पैदा हुई, तो जहाँ बुद्धि मुझती है तो आत्मा सदगति में है या दुर्गति में है? मन बुद्धि दुर्गति की स्टेज में है, क्योंकि निश्चय नहीं है। और परमात्मा या परमात्मा पाठ बजाने वाला कभी अनिश्चय बुद्धि स्टेज में होता हुआ क्या? वो खुद ही अनिश्चय बुद्धि स्टेज में होगा, हिलने डुलने वाला होगा, दूसरों के चक्कर काटने वाला होगा। तो इसका मतलब जिसके वो चक्कर काट रहा है वही उसका गुरु हो गया, तो उसकी अपनी सदगति कैसे कहें? इसलिए सदगति दाता तो एक ही होता है, जो परमात्मा पार्ट सदगति दाता के रूप में पार्ट बजाता है वो किसी के चक्कर नहीं काट सकता। बाकी सभी मनुष्यात्माओं को चक्कर लुभा हुआ है, थोड़ा या ज्यादा। तो आसमान में भी सितारे हैं, कोई छोटा चक्कर काटते हैं और कोई बड़ा चक्कर काटते हैं। एक सितारा ऐसा है जो एक स्थान पर स्थिर रहता है, किसी के चक्कर चक्कर नहीं काटता, वो है ध्रुव तारा। तो ध्रुव का मतलब ही है असंशय निश्चय बुद्धि, अटल अखंड अडोल अवस्था। तो जो बुझने वाले हैं वो दूसरों की सदगति नहीं कर सकते। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप को ही देना पड़ता है, क्योंकि नया ज्ञान होगा, नई बात होगी तो नई दुनिया स्थापन होगी। और वही पुरानी बातें शास्त्रों की सुनाने वाले होंगे तो पुरानी दुनिया बनेगी। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नई दुनिया का ज्ञान नहीं दे सकते। तो बाप को जानना चाहिए ना, जो नई दुनिया का संगठन बनाने वाला है। बच्चों को भगवान से वर्षा लेना है, भक्ति भी चली आती है, लेकिन सारी दुनिया में सब क्या है? सब भक्त है। इसलिए मुस्लिम बोलते तुम सब भक्तियाँ हो, तुम सब सीताएं हो। तो एक जैसी भक्तियाँ हैं या नंबरवार भक्तियाँ हैं? भक्तियाँ तो जरूर नंबरवार हैं, सीताएं भी नंबरवार हैं, क्योंकि सब रावण की जेल में फंसी हुई है। सबके अंदर मुझात है, इस बंधन से हम दूर कहते हैं। बुद्धि खुली हुई किसी की नहीं, कुछ न कुछ परसेंटेज में मुझान जरूर रहती है। तो मन बुद्धि की दुर्गति है तो शरीर तो सदगति में आ ही नहीं सकता। शरीर है स्थूल और मन बुद्धि है सूक्ष्म बीज, तो पहले बीज का सुधार होना पड़े। बीज सुधरेगा तो वृक्ष भी सुधर जाएगा। तो भक्तों को भगवान से वर्षा लेना है। भक्त अनेक हैं और भगवान एक है, तो ये भक्ति भी चली आती है। भीतर भीतर में परमात्मा को ढूंढते रहते। ये भी शूटिंग कहाँ होती है? ये भी संगम में ही शूटिंग होती है। भीतर माना भीतर बुद्धि। मिट्टी की ढेले को भीतर कहा जाता है। जैसे मिट्टी की ढेले में ठोकर लगती है और ढेला टूट जाता है, तो ऐसे यहाँ भी ज्ञान में चलने वाले ठिककर बुद्धि हैं कि थोड़ी सी माया की ठोकर लगी और ज्ञान में से टूट पड़े, संशय बुद्धि हो गई, बुझ गए। तो ऐसे ठिककर बुद्धि में परमात्मा आवेगा क्या है? परमात्मा निश्चय बुद्धि में आवेगा, ध्रुवतारे में आवेगा, या अपना स्थान फर्श से छोड़ देने वाले तारे में आवेगा? जरूर ध्रुव तारे में आवेगा। ठिककर बुद्धियों में परमात्मा नहीं आ सकता। ठिककर तो अनेक हैं। परमात्मा कोई सर्वव्यापी नहीं, वो तो एक व्यापी होकर के संसार में आता है। ठिककर अनेक हैं। तो जिस एक व्यापी में आता है, एक में आता है, वो एक ठिककर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी माया की ठोकर लेंगे और ज्ञान में से टूट पड़े। ऐसे में अगर परमात्मा आएगा, परमात्मा पार्थ के रूप में प्रत्यक्ष होगा, तो आज प्रत्यक्ष होगा और कल उड़ जाएगा। भगवान तो कोई एक थोड़े ही है। आज भगवान के कितने अवतार हैं भारतवर्ष में? ढेर के ढेर अवतार हैं। आज आचार्य रजनीश भगवान अपने को घोषित करते और कल बिस्तर माना भीत दीवाल, जो ज्ञान मार्ग के रास्ते में दीवाल बनकर के खड़े हो जाए, न खुद आगे बढ़े और न दूसरों को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने दे, ऐसे भीतर बुद्धियों में भी परमात्मा नहीं आता। जो ज्ञान के रास्ते में विघ्न पैदा करने वाले हैं, रोड़ा अटकाने वाले हैं, यज्ञ का सहयोगी बनना है, न कि विरोधी बनना चाहिए। सहयोगी बनने वालों में ही परमात्मा आता है। तो जो 100% सहयोगी है उसी में परमात्मा आता है। सहयोगी सो योगी। 100% सहयोगी नहीं होगा तो संपूर्ण 100% योगी भी नहीं होगा। तो योगी और सहयोगी ये साथ ही साथ होता है, पैरेलल है। जितना सहयोगी होगा, काय से सहयोगी, तन से सहयोगी, तन पूरा अर्पण करना पड़े, मन से सहयोगी, मन भी पूरा अर्पण करना पड़े, जरा भी अपनी मन मत मिक्स न करे, और धन भी पूरा अर्पण करना पड़े। ऐसे नहीं सारा धन तो लगा दिया, थोड़ा धन अपने शरीर की सुरक्षा के लिए भी चाहिए। तो अपने शरीर की जहाँ सुरक्षा की बात आ गई, वहाँ थोड़े धन से सहयोगी नहीं हुआ। नहीं, अपनी परवाह नहीं, अपने पेट की कोई परवाह नहीं, पेट पलेगा या नहीं पलेगा। क्यों? क्योंकि बाप ने तो गारंटी दी है, जो मेरी सेवा में रहेंगे वो भूख नहीं मर सकते। तो अपनी क्या चिंता। तो तन भी पूरा अर्पण, धन भी पूरा अर्पण, मन भी पूरा अर्पण, और लौकिक अलौकिक दुनिया के जो संबंध हैं, वो संबंध भी पूरे अर्पण करने पर। संबंध ही नहीं, संबंध तो क्लोज कॉन्टेक्ट को कहा जाता है, जो संपर्क हैं वो भी अर्पण करने पड़े, और समय भी पूरा अर्पण करना पड़े। ऐसे नहीं कि थोड़ा समय अपने स्वार्थ के कार्यों में लगा ले। तो जो 100% हर तरीके से सहयोगी होगा, वो ही परमात्मा का आधार बनता है, और आधार बन करके, एक व्यापी बन करके परमात्मा उसके थ्रू संसार में प्रत्यक्ष होता है।
बाकी परमात्मा कोई सर्वव्यापी बन करके नहीं आता। परम धाम से सुप्रीम सोल आएगा तो वो तो जानता है ना कि कौन सी आत्मा है सत्य रूपी रंगमंच पर सदा सरेंडर्ड होकर के रहती है सत्य की भलाई के लिए, और कौन सी आत्मा है स्वार्थी बन करके रहती है। तो परमात्मा प्रेफरेंस किसको देगा? जरूर निस्वार्थी को। इसलिए गीता में जो संस्कृत की गीता है उसमें भी ये बहुत बात गाई हुई है कि कर्म करो लेकिन निस्वार्थ होकर के करो। लेकिन बाबा मुरली में क्या कहते हैं? निष्काम सेवाधारी तो सिर्फ एक ही है और बाकी तो को तो कुछ न कुछ कामना लगी रहती है। तो बिस्तर बुद्धियों में भी परमात्मा नहीं आता। जो ज्ञान के रास्ते में भीत अर्थात दीवाल बन करके खड़े हो जाए, सही योगी में परमात्मा आता है। ऐसे नहीं कि एक में ही आता है, आता तो अनेकों में भी है लेकिन मुकर्रर रथ के रूप में संसार में एक ही रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। बाकी जो जितने सहयोगी बनते हैं परमात्मा के कार्य में उनको परमात्मा की मदद जरूर मिलती है। तो समझते सब हैं परमात्मा के रूप हैं, वास्तव में हैं सब भाई भाई। लक्ष्मी नारायण से लेकर के जो भी मनुष्य मात्र हैं, सतयुग के लक्ष्मी नारायण जो सबसे ऊंचा पार्ट है, उनसे लेकर के जो भी 500 करोड़ मनुष्य मात्र हैं, वो सब भाई भाई है। क्या उनमें बाप एक भी नहीं? क्यों? नारायण बाप नहीं हुआ, मनुष्य शक्ति का बाप नहीं हुआ। नारायण जब नाम है तो बाप नहीं हुआ, क्योंकि नारायण तो देवता को कहा जाता है और देवता में परमात्मा बाप प्रवेश नहीं करता। वो किस में प्रवेश करता है? पतित तन में प्रवेश करता है, है? पतित तन में प्रवेश करता है, पावन नारायण के तन में परमात्मा नहीं आता। तो परमात्मा को ढूंढते रहते ही भाई भाई में नहीं होता है। लक्ष्मी नारायण से लेकर जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं। यानी नारायण भी किसकी औलाद हुआ? प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हुआ। ये क्या बात हुई? वो ही शरीरधारी नारायण जो अभी पुरुषार्थ करने वाली आत्मा होगी या परमात्मा जिसमें प्रवेश कर रहा होगा, वही तो प्रजापिता हुआ। और वही प्रजापिता जाकर के मनुष्य शक्ति का पिता बनेगा, विश्व पिता बनेगा, विश्व का मालिक बनेगा। तो अलग हुआ या एक हुआ? है? है? एक हुआ। अलग कहाँ हुआ? अरे वही व्यक्तित्व, तो वही पर्सनालिटी जिसमें परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं, वही प्रजापिता, और वही आगे चल करके नारायण यानी विश्व का पिता या विश्वपति या विश्व का मालिक घोषित हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो अलग कहाँ हुआ? वही नर से नारायण कहा जाएगा। इसलिए कहा ऐसा कि यज्ञ के आदि में जिस रूप से परमात्मा ने बीजारोपण किया था, वो बीजारोपण जिस तन में प्रवेश करके किया उस समय उसकी एज कितनी थी? 60 वर्ष। तो 7 साल की एज वो और 40 वर्ष दूसरे, तो 76 में वो टाइम पूरा हो जाता है जो बीजारोपण ज्ञान का करने वाला पिता हुआ, बीज बोने वाला। तो वो यज्ञ के आदि का व्यक्तित्व तो हुआ प्रजापिता। और जब वो विश्व का मालिक बन जाएगा तो प्रजापिता नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? वो प्रजापति हो जाएगा, विश्व का पति हो जाएगा, 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की रक्षा करने वाला हो जाएगा। तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं सब भाई भाई। अगर शिव की औलाद कहें तो वो तो निराकारी आत्माएं हैं, शिव की औलाद। باقی جب تک نراکاری اسٹیج میں ٹکے نہیں ہیں تب تک کس کی اولاد ہے؟ پرجا پتا کی سب اولاد شیو ہے نراکاری، کوئی اہنکار نہیں، نراکاری نرہنکاری نرویکاری۔ اور پرجا پتا نے، پرجا پتا میں اہنکار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، ہوگا تو ضرور، لیکن اگر ہم اسے پرماتما کے روپ میں دیکھیں گے، ہماری دستی اگر پرماتما کے روپ میں نشچے بدھی بن گئی تو ہم اس کو وکرت کے روپ میں نہیں دیکھیں گے، یہ بات دوسری ہے، کیونکہ ہماری بھاونا پکی ہو گئی، ہم بھکت بھگوان کے بچے ہیں۔ اس لیے باقی ایسا نہیں ہے کہ پرجا پتا کوئی پاون بن گیا۔ اگر ہم شیو کی اولاد کہیں تو نراکاری آتمائیں ہی شیو کی اولاد ہوں گی۔ روحانی باپ کس کو بیٹھ پڑھاتے ہیں؟ روحانی بچوں کو بیٹھ پڑھاتے ہیں، دے ابھیمانی کانڈوں کو پڑھاتے ہی نہیں۔ مانا جو نراکاری اسٹیج میں آپ کو اپنے کو استھر کیے ہوئے ہیں، نراکاری اسٹیج میں اپنے کو سمجھے بیٹھے ہیں، نرہنکاری اسٹیج میں جو ہیں وہی باپ کے بچے ہیں، انہی بچوں کو باپ پڑھائی پڑھاتا ہے۔ باقی ذرا بھی دیہبان ہوگا تو باپ کی پڑھائی بیٹھ کر کے پڑھے گا ہی نہیں۔ جس پرسنٹیج میں دیہبان ہوگا اسی پرسنٹیج میں وہ پرماتما کی پڑھائی ہوئی پڑھائی کو نگلیکٹ ضرور کرے گا، ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکال لے گا۔ تو پرماتما باپ کس کو پڑھاتے ہیں؟ روحانی باپ روحانی بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ پھر پرجا پتا، پرجا پتا کا کام کیا ہوا؟ روحانی باپ تو روحانی بچوں کو بیٹھ پڑھاتے ہیں، پھر جسمانی باپ، ہاں ان کی ٹکر ہوتی ہے کس سے؟ دیہ ابھیمانی کانڈ ہوں گے۔ بچے تمہارا باپ آیا ہوا ہے، مرلی میں بولتے ہیں، مرلی میں یہ واقعی کبھی سنا یا پڑھا ہے کیا؟ بچے تمہارا باپ آیا ہوا ہے، کائے میں باپ، ہر بات میں باپ، اچھائی میں بھی تمہارا باپ اور برائی میں بھی تمہارا باپ، اچھے کرموں میں بھی تمہارا باپ اور برے کرموں میں بھی تمہارا باپ ہے۔ تو پرجا پتا برہما کی تو سب اولاد ہے، برہما کے بچے بہن بھائی جسمانی ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ہوں گے تو ضرور پرجا پتا برہما کی اولاد ہوئی، اور آپس میں بھائی بھائی کی اسٹیج میں ہے تو نراکار باپ کے بچے آتما ہوں، تو سب جسمانی بھائی بہن ہو جاتے ہیں، پرنتو پھر گرست ویوہار میں آنے سے بھائی بہن کا نام بھول جاتے ہیں۔ ہے تو پرجا پتا برہما کی اولاد، کیا پرجا پتا برہما کی اولاد ہیں تو آپس میں کیا ہوئے؟ بھائی بہن ہوئے، ہے تو بھائی بہن، لیکن بدھی میں بھول جاتا ہے کیا کہ ہم پرجا پتا برہما کی اولاد ہیں، جو دے ابھیمانی سانڈوں کا بھی باپ ہے، ہم اس کے بچے ہیں۔ تب کیا ہوگا؟ بھول جائیں گے تو دھرمراج کا روپ بھول جائے گا یا یاد رہے گا؟ کیا ہوگا؟ بھول جائے گا نا۔ یگیہ کے آدمی میں کیا ہوا؟ جو دے ابھیمانی سانڈے تھے انہوں نے ورودھ کیا، انجام کیا ہوا؟ انت میں انجام کیا ہوا؟ کورٹ کچہری تک بھی بات جب پہنچ گئی، رزلٹ کیا ہوا؟ جھکنا کس کو پڑا؟ جو دے ابھیمانی ورودھ کرنے والے تھے ان سب کو جھکنا پڑا۔ تو جو آج میں ہوا وہ انت میں ہوگا۔ باپ تو بھائی بہن بنانے کے لیے کرت سنکلپ ہے، نشچے بدھی ہے، یہ سب میرے بچے ہیں۔ تو پرجا پتا کو جب اپنے پرجا پتا پنے کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ تو اپنے کام پر اپنی کرسی پر سیٹ ہو جاتا ہے، اور جو کرسی پر سیٹ ہو جاتا ہے وہ پھر دوسروں کو بھی سیٹ ضرور کرتا ہے۔ تو پرجا پتا برہما کی اولاد ہوں گے تو کیا ہوں گے آپس میں؟ بھائی بہن ضرور ہونے چاہیے، لیکن ابھی بھائی بہن بنے ہیں کیا؟ کبھی درشتی وتی چنچل تو نہیں ہوتی ہے، होती है तो भाई बहन नहीं हुए ना। तो गृहस्थ व्यवहार में आने से भाई बहन का नाम भूल जाते। फिर कौन से व्यवहार में रहना चाहिए? जो बेहद का गृहस्थी है, कमल फूल जिसको कहा जाता है, किंग फ्लावर, उस किंग फ्लावर के हम सब बच्चे हैं। अगर ये ध्यान बुद्धि में रहे कि हम सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा में भाई बहन बनाने के लिए परमात्मा बाप आया हुआ है, तो विकर्म न हो। अगर वह ज्ञान रहे तो फिर विकार में भी न जाए। कौन सा ज्ञान? कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा की औलाद हैं। तो ब्रह्मा की औलाद पना भूल जाता है, और जब भूल जाता है तो बुद्धि में भाई बहन पना जो है वो भूल जाता है। तो अभी फिर बाप समझाते हैं तुम विकार में न जाओ। कब समझाते हैं? अभी समझाते हैं कि अब तुम विपरीत कर्म न करो। बच्चे अगर विपरीत कर्म करें, भाई बहन भाई बहन है और भाई बहन कोई उल्टा काम करे, तो माँ बाप को क्रोध आएगा या नहीं आएगा?
आएगा।
जायज होगा या नाजायज होगा? माँ बाप को जो क्रोध आएगा वो जायज होगा या नाजायज होगा? है जायज होगा ना? जायज माने सही, नाजायज माने गलत। है जायज माने सही। बाप को जो क्रोध आएगा बच्चों के ऊपर, जिन बच्चों के ऊपर, वो जायज हुआ या नाजायज हुआ? सही हुआ या रंग हुआ? सही हुआ, जायज हुआ।
ठीक है, ये कौन सी भाषा का वर्ड है?
उर्दू का। तो बाप कहते हैं अब तुम फिर विकार में न जाओ। जो गए सो गए, लेकिन अब फिर विकार में न जाओ। तुम एक बाप के बच्चे भाई बहन हो। एक बाप क्यों कहा? जिस्मानी स्टेज में है तो अलग अलग बाप हुए, और जब हम अलौकिकता में आ गए तो अलौकिक में तो एक ही परिवार है, एक ही परिवार का एक ही कर्ता धरता है, एक ही बाप है। तो निश्चय है कि ये वही बेहद का बाप है। वही माना कौन सा? वही बेहद का बाप है जो 5000 वर्ष पहले शक्ति का नियंता बना था, शक्ति का आदि बना था। हम उस बाप से वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा भी कौन लेंगे? भाई बहन बने होंगे वो वर्षा लेंगे, या नालायक को बाप वर्षा देगा? पहले क्या देखेगा? देखेगा लायकात, देखेगा ना कि ये भाई बहन बने हैं। तो जिनकी बुद्धि में होगा कि हम बाप से वर्षा जरूर लेंगे, वो क्या करेंगे? मन मना भव और मध्याजी भव। मन मना भव माना मत मना भव, मत माना मेरे, मना माना मन में, और भव माना समाजन। वो ये काम जरूर करेंगे जिनको वर्षा लेना होगा। मेरे मन में समाजा, ये नहीं कहा अपने मन में समाजा या किसी और मनुष्य के मन में समाजा, मन के संकल्पों में समाजा, नहीं। जो मेरा संकल्प माना, जो बाप का संकल्प, सो बच्चे का संकल्प। अगर संकल्प मात्र में भी भेद है, बाप का संकल्प एक और बच्चे का संकल्प दूसरा, तो मन मना भव नहीं हुआ। मन मना भव नहीं है तो बाप का वर्षा मिल नहीं सकता। तो संकल्प मात्र में भी जब एक होगा तो वाचा से तो विरोध करने की बात पैदा ही नहीं हो सकती, और कर्मेंद्रियों से विरोध करने की तो बात पैदा ही नहीं हो सकती। कौन सा विरोध? सबसे बड़ी भूल कौन सी हो गई सृष्टि में? एक ही एकज भूल बड़ी से बड़ी हो गई, कौन सी? कृष्ण को बाप बनाई दिया। कृष्ण क्या है? बच्चा। और कृष्ण बच्चे को क्या बनाई दिया? बाप बनाई दिया। तो बाप क्या कहेगा है? और तो आपे से बाहर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी भूल हो गई। जो बच्चे आपस में विकार में जाते हैं, विकारी बनते हैं और ये साबित कर देते हैं दुनिया वालों को कि हम एक बाप के बच्चे नहीं हैं, तो ग्लानी कराने वाले हुए, विघ्न पैदा करने वाले पत्थर बुद्धि हुए, चक्कर बुद्धि हुए, या परमात्मा बाप के बच्चे हुए, सहयोगी। इसलिए बताया ये बड़े से बड़ा विकर्म है, इसको छोटा विकर्म नहीं समझना। तो मनमना भव वो होंगे जो बाप से वर्षा लेने वाले होंगे, और मनमना भव होने के बाद सेकंड स्टेज है मत्यागी भव। मत माना मेरे लिए, मेरे में, यादी माना यजन करने वाला, कर्म करने वाला, भव माने हो जा, यानी जो भी तू कर्म कर वो किसके लिए कर? मेरे अर्थ कर, अपने लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, परमात्मा बाप के लिए कर्म कर। तो बच्चे अगर भाई बहन की स्टेज से नीचे गिरे, विकार में गए, तो मेरे लिए कर्म किया या अपने लिए किया? तो मेरे लिए तो कर्म नहीं हुआ। मत्यागी भव का मतलब यह है कि जो भी कर्म करे, उन सारे कर्मों का फल किसको मिले? परमात्मा बाप के रूप में जो पार्ट बजाने वाला परमात्मा पार्टधारी है, उसके प्रति वो फल जाना चाहिए। मान लो नौकरी ही करता है, लौकिक नौकरी, तो लौकिक नौकरी करने वाले की बुद्धि में भी ये भान रहे कि हम जो नौकरी कर रहे हैं, इससे जो पेमेंट हमको मिलता है, ये पेमेंट भी हमको बाबा की सेवा में लगाना है। तो जरूर जैसे बाबा चलाएगा वैसे सेवा में लगाइए। तो मनमना भव और फिर बाद में मध्याजी भव। जो मनमना भव नहीं हुआ है वो मध्याजी भव नहीं हो सकता। क्या मन अगर परमात्मा बाप के संकल्पों के विपरीत है तो कर्म भी और वाचा भी विपरीत जाएगी, जरूर विपरीत जाएगी, वो मध्याजी भव नहीं हो सकता। दूसरों के लिए यजन करने वाला बन जाएगा, कर्म करने वाला बन जाएगा, स्वार्थ के लिए कर्म करने वाला बन जाएगा, परमार्थ के लिए कर्म करने वाला नहीं बन सकेगा। तो कितनी सहज बातें हैं समझने की। धंधा धोरी करके बुद्धि में ये स्मृति रहे कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, तो ये खुशी रहेगी। ये 84 जन्मों का चक्र है, 84 जन्म सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं के ही होते हैं। जो कम जन्म लेने वाले हैं वो बाप के डायरेक्ट बच्चे नहीं होते, और न उनको बाप से डायरेक्ट स्नेह का पानी मिलता है। बाप इस समय जो रूहानी बाग है नई दुनिया का, उसको डायरेक्ट स्नेह का पानी दे रहे, लेकिन कौन लेने वाले होंगे? जो पूरे 84 जन्म लेने वाले देवताएं बनने वाली आत्माएं होंगी, वो डायरेक्ट स्नेह लेंगी, बाकी दूसरे डायरेक्ट स्नेह नहीं लेंगे। कोई न कोई दूसरे मनुष्य आत्मा की आत्मिक स्टेज में टिक जाते हैं और परमात्मा बाप से डायरेक्ट स्नेह लेने के पात्र बनते हैं। तो उनका हुआ सुदर्शन चक्र, बाकी सुदर्शन चक्रधारी होते ही नहीं। तो बाप भी याद आएगा, सुदर्शन चक्र भी याद आएगा, और पांच युग भी याद रहेंगे। संगम युग भी याद रहेगा, संगम युग याद होगा तो प्रजापिता भी याद होगा, परमात्मा बाप भी याद होगा और फिर ब्राह्मण बना भी याद होगा, हम आपस में भाई बहन हैं ये भी याद होगा। तीसरा पेज, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, बुद्धि में चक्र चलता रहे और शरीर निर्वाहार से हम काम भी करते रहे। बाबा ने कहा है सुदर्शन चक्र का ज्ञान मेरे भक्तों को देना है। क्या बाप के भक्त भी हैं, बाप के वारसदार भी हैं, बाप की प्रजा भी होती है और बाप के दास दासी भी बनते हैं। क्या ऐसे नहीं बच्चों की प्रजा होती है, बच्चे ही प्रजा बनाते हैं, बाप भी प्रजा बनाता, तो कैसी प्रजा बनेगी? बच्चों की प्रजा में और बाप की प्रजा में क्या अंतर होगा? कोई विशेषता होगी या नहीं होगी? बच्चों की जो प्रजा होगी वो देहाभिमानी जरूर होगी, आत्म की स्टेज में टिकने वाली नहीं होगी। जितने भी 7-8 नारायण हैं, उन सबकी प्रजा कैसी होगी? कुछ न कुछ देहाभिमान वाली होगी, कुछ न कुछ कम जन्म लेने वाली होगी, कम कलाओं वाली होगी, लेकिन बाप की जो प्रजा होगी प्रमाण प्रकट रूपेण जा माना जायते, जिसने प्रकट रूप से जन्म लिया है, हाँ साधारण रूप से नहीं, प्रकट रूप से माना अद्भुत रूप से, तो ऐसी प्रजा 4.5 लाख मनुष्य आत्माएं, 4-5 लाख मनुष्य आत्माएं ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो मेरे भक्ति की लिस्ट में भी है, तो उसमें प्रजा भी है, उसमें वारसदार भी है और उसमें दास दासी भी बनने वाले। तो ये सुदर्शन चक्र का ज्ञान मेरे भक्तों को देना है। क्या ये ज्ञान ऐसे ही फालतू नहीं गंवाना है, ये भी परखना है। क्या कि परमात्मा बाप के 84 जन्म लेने वाले बच्चे कौन से हैं? जो बच्चे ही नहीं होंगे 84 जन्म लेने वाले, वो इस बात पर विचार ही नहीं करेंगे, नई सृष्टि कैसे आएगी? वो कहेंगे अरे क्या होता है, हमें ज्ञान की गहराई में जाने से क्या लेना देना। तो जो मेरे भक्त हैं उनको समझाने से झट निश्चय होगा, बरोबर हम 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्म न लेने वाला होगा तो उनको ज्ञान की धारणा ही नहीं होगी, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल लेंगे। 84 जन्मों का अर्थ ही है पहले पहले हम सूर्यवंशी में आएंगे। क्या कहा? 84 जन्म माना डायरेक्ट सूर्य के वंश में आने वाला, नहीं तो चंद्रमा के वंश में आने वाला हो जाएगा। चंद्रमा का वंश कब से शुरू होगा? रेखा से नहीं, एक्चुअली ब्रह्मा की जो सोल है वही ज्ञान चंद्रमा है ना, वो सत्युग में जाकर के नारायण बनेगी, तो उस नारायण के जो बच्चे बनेंगे वो कम कला वाले हुए या 16 कला संपूर्ण हुए? कम कला वाले हो गए, तो कम कलाएं तो चंद्रमा की होती है, कलाओं से भी पते परे इससे जो होती है वो सूर्य की होती है, सूर्य को कलाओं में नहीं बांधा जाता। तो थोड़ा भी कोई सुन करके जाएगा तो स्वर्ग में जरूर आएगा। 84 जन्मों का अर्थ है पहले पहले हम सूर्यवंशी में आएंगे, उनकी निशानी क्या होगी? थोड़ा भी सुनेंगे उनको धारणा जरूर होगी। किससे सुन करके जाएगा? बाप से थोड़ा भी सुन करके जाएगा तो वो स्वर्ग में जरूर आ जाएगा। माना कितने आवेंगे स्वर्ग में? है? हाँ 4.5 लाख ऐसी आत्माएं होंगी जो शरीर रहते रहते स्वर्ग में जरूर पहुंचेंगी, थोड़ा भी अगर परमात्मा बाप से सुनेंगी तो। लेकिन जो सूर्यवंशी में नहीं आने वाले होंगे वो एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, उनको धारणा पूरी होगी नहीं तो 84 जन्म भी नहीं लेंगे। देरी से भी आ सकते हैं। उनके लिए फिर 84 जन्म थोड़े ही कहेंगे। तो ये ज्ञान की कितनी महीन बातें हैं, कितना हिसाब किताब है। फिर भी बाप कहते हैं, अच्छा अगर इतना गुजराज नहीं समझते हो तो भला बाप का बन वर्षा तो ले लो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो स्वर्ग का रह कहता है, वो नशा रहना चाहिए, परंतु माया ये नशा ठहरने नहीं देती। क्या कि हम ऐसे बाप के बच्चे हैं जो डायरेक्ट हमको स्वर्ग की दुनिया में ले जाने वाला है। ये नशा माया नहीं ठहरने देती। कोई तो कहते हैं बाप और वर्षों को याद करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, माया हमारा क्या करेगी, हम तो जरूर वर्षा पाएंगे। तो देखो उनके लिए कितनी सहज बात हो जाती। कोई को तीर लग जाए तो बाप और वर्षे की याद करके बहुत खुशी में रहे। तीर लगने वाले की निशानी क्या बताई,
खुशी में,
वो बहुत खुशी में होगा। जब तक वो खुशी नहीं आती है तो बाबा कहेंगे कि पाई पैसे के निश्चय वाले हैं। पक्के निश्चय वाले को खुशी का पारा बहुत चढ़ा रहता है। वो राजा के पास संतान नहीं होती है तो कहते हैं कि किले के अंदर जो पहले पहले आएगा उनको हम गोद में ले लेंगे, ऐसी शर्त रख देते हैं। फिर क्यों लग जाती है जाने वालों की, मैच में भी क्यों लगती है ना, तो ये भी मैच है, ये भी बाबा ने एक खेल है, खेल बच्चों के सामने रख दिया है कि देखें बाप के पास पहले कौन पहुंचता है। ये पुरुषार्थ की दौड़ हो गई कि बाप को पहचाने और पहचान करके बाप के पास पहुंचे, यानी समीप, बाप के समीप पहुंचे। नजदीक पहुंचने का मतलब क्या हुआ, शरीर से नजदीक नहीं, मन मना बाबा मन बुद्धि से नजदीक पहुंचे। दूध की बोतलों की भी क्यों लग जाती है, पहला नंबर जाने के लिए सवेरे उठ करके जाए खड़े होते हैं, तो तुमको भी क्या करना पड़े, सवेरे सवेरे उठ करके पुरुषार्थ में खड़ा हो जाना पड़े। दूध लेने की लाइन में नहीं तो समझते हैं, फिर ठहरना पड़ेगा। अगर हम पहले नहीं पहुंचे क्यों में, पहले उठे नहीं अमृत बेला, जल्दी नहीं उठे तो क्या होगा, क्यों में ठहरना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्यों है, बाबा के गले का हार भरने के लिए। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, बाप को याद करना ये बुद्धि की दौड़ है, बाकी काम आज भल करते रहो। ये थोड़े ही मना किया कि कर्मेंद्रियों से काम न करो, काम भल करो, लेकिन शर्त क्या है, सिर्फ मेरे को याद करो। आत्मा की दिल याद दे कम कार दे। आशिक मासुक एक जगह बैठ थोड़े ही जाते हैं, काम काज आदि सब कुछ करते, बुद्धि उनकी तरफ रहती है। तो यहाँ भी बुद्धि एक बाप के साथ चाहिए जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। तो जो टाइम मिलता है उसमें पुरुषार्थ करो, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। ये कोई हमारा कर्म संन्यास तो है नहीं कि हम कर्म करें, कर्मेंद्रियों से कर्म करना ही छोड़ दें। शरीर निर्वाह तो करना ही है। बाप अब ब्रह्मा तन में आकर के कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तुम हमको अपना नहीं बनाएंगे क्या, कौन कहता है, ब्रह्मा के तन में बाप कहते हैं, बिंदु बाप नहीं कहते कि तुम हमको अपना नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, हम तुमको स्वर्ग का मालिक नहीं बनाऊंगा, मेरे बने हो तो अब मेरे साथ योग लगाओ, नहीं तो मेरे धाम में आ नहीं सकेंगे। क्या मेरे धाम में आ नहीं सकेंगे, तेरे धाम में तो 500 करोड़ पहुंचते हैं, ये कैसे कह दिया नहीं आ सकेंगे। हाँ मेरे धाम में आए नहीं सकेंगे मेरे बनकर, और फिर भी तुम पवित्र नहीं रहेंगे, नाम बदनाम करेंगे तो बहुत अच्छा।